किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि कामकाजी दुनिया में अपने करियर को एक दिशा देना बहुत उलझन भरा है और अक्सर वही व्यक्ति उलझनों से घिर जाता है जिसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं होता। दरअसल कोई काम करना और किसी रोजगार को हासिल करना बहुत आसान प्रतीत होता है। व्यक्ति किसी हुनर को सीखने के बाद किसी विज्ञापन या मित्र के माध्यम से किसी नौकरी के बारे में पता लगने पर इंटरव्यू देने जाता है। अब उसे नौकरी मिल जाती है और वह रोजाना काम पर जाने लगता है। वह सौंपे गए कार्यों को करने लगता है और समय गुजरने के साथ साथ अपने वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद भी करता है। वह उम्मीद करता है कि सेवानिवृत्त होने के बाद उसे पेंशन मिलेगी या कोई ऐसी सरकार आएगी जो बुढ़ापे में उसके कल्याण के लिए कुछ करेगी। आमतौर पर आदमी ऐसा ही सोचता है, लेकिन समय बदलता है और सामान्य व्यवस्थाएं कभी कभी गड़बड़ा जाती हैं। भाग्य से संबंधित विभिन्न घटनाएं और संयोग जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्तिगत बातों से पूरी तरह अलग कुछ बाहरी कारण हालातों को बदल डालते हैं। अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से गुजर रही सरकार पर्याप्त पेंशन देने में असफल रहती है। आदमी का व्यापार मंदी के कारण चौपट हो जाता है या किसी भी कारण से उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह दूसरों की दया पर निर्भर हो जाता है। कामकाजी दुनिया में अपने अनेक शत्रुओं के बीच एक कामगार कोई बहुत शक्तिशाली इंसान नहीं होता। कुछ राजनीति से प्रेरित व्यवस्था फैलाने वाले लोग जो सब्ज बाग दिखाकर बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें करते हैं और स्वयं को कामगारों का हितैषी जाहिर करते हैं, कभी भी सच्चाई को सामने नहीं रखते। किसी कर्मचारी के लिए जो समस्या बहुत बड़ी एवं महत्वपूर्ण हो सकती है, संभव है किसी सफल उद्योगपति के लिए बहुत साधारण हो। जैसे करों में कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी का मतलब हो सकता है कि अब उसे अपनी छोटी मोटी खुशियों के साथ समझौता करना पड़ेगा। अगर व्यापार में मंदी चल रही है तो इसका परिणाम कम वेतन हो सकता है और यह भी संभव है कि व्यक्ति को अपने ऐशो आराम के कुछ या सभी साधनों में कटौती करनी पड़े, यहाँ तक कि उसे जीवन की कुछ आवश्यक वस्तुओं या अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। डॉक्टर एल रॉन हर्बर्ट, बहुत अच्छी बुक में से ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए निकाली हैं। और अभी अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जगजीत जी के साथ। जगजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
नमस्कार जी।
जगजीत जी, आज हमारे पास जो हमारे इस प्रोग्राम का सबसे पहला हॉरोस्कोप है, आप हमारे साथ कौन सा शेयर करेंगे?
जी, सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 31 मई 1973, और इनका जो क्वेश्चन है इस साल के विषय में भी है और स्पेशली हेल्थ के विषय में है कि हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो उस विषय में जानना चाहा है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो होरोस्कोप है और उनमें जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो मैं इन्हें बताना चाहूँगा। इनके होरोस्कोप में इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर असेंडेंट की बात मैं करूँ, वो है वीनस। और शुक्र इनके होरोस्कोप में जिस भाव में है वो भाव कुछ अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरा, अगर मैं इनके होरोस्कोप सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की बात करता हूं, तो इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूं चतुर्थ और पंचम मेष की बात करूं, तो जो शनि की स्थिति है वो भी इनके होरोस्कोप में जो अच्छी नहीं है, या मैं मरकरी की स्थिति बोलूं। और इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करता हूं जुपिटर, क्योंकि कई बार ऐसा भी माना जाता है कि अगर होरोस्कोप में जो जुपिटर की स्थिति अच्छी रहती है तो होरोस्कोप के बहुत सारे जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। इनके होरोस्कोप में अगर मैं जुपिटर की बात करता हूं तो जुपिटर डेबिलिटेट भी है, जबकि जुपिटर इनके होरोस्कोप में, जैसे कि हम अपने भाई बहन या रिलेटिव से जो मदद मिलती है या शत्रु भाव के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारे क्लोज रहने वाले हैं उनसे भी जिंदगी में जो मदद है ये नहीं मिल पाती। लेकिन इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूं चंद्र की स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति की जब भी मैरिज होती है उसके बाद इंसान का जो भाग्य है ये जरूर उदय होता है। और इनके होरोस्कोप में, जैसे कि होरोस्कोप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, काल सर्प योग रहता है, तो कई बार देखने में आया है जब जब काल सर्प योग रहता है तो इंसान को जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और देखा गया है कई बार अचीवमेंट जो रहती है वो कम रहती है। तो ऐसे कुछ इनके होरोस्कोप में जो योग हैं ये बन रहे हैं। जहां तक रहा इनकी हेल्थ के विषय में है, जैसे कि मैंने बताया कि इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वीनस, उनकी स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है, और जैसे कि शनि की स्थिति है वो इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं आगे चलकर भी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहती। मेरा तो इन्हें यही एडवाइस रहेगा कि इन्हें अपना जो भी ये मेडिसिन लेते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं वो इन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके होरोस्कोप में कुछ ऐसे योग बनते हैं कि आगे चलकर इनकी जो हेल्थ है वो भी और भी खराब रह सकती है। क्योंकि इस साल भी इनके जो कुछ प्लैनेट्स चेंज हुए हैं जो कि नेक्स्ट मई तक रहेंगे, उसकी भी स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है। जैसे कि इस बार भी जो जुपिटर की स्थिति इनके होरोस्कोप में है वो भाव जो है वो अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जुपिटर की स्थिति ऐसी रहती है तो इंसान को पेट से संबंधित कोई ना कोई जो रोग है ये जरूर रहता है। तो मैंने यही कहना चाहूँगा कि इस साल भी जो इनके प्लैनेट्स चेंज हुए हैं हेल्थ के लिए कुछ अच्छे नहीं है, फिर भी इन्हें ये चाहिए जहाँ भी इनकी भगवान में श्रद्धा है, जब भी कभी ये धर्म स्थान पर जाते हैं, अगर वहाँ पे ये चने की दाल चाहे उड़द की दाल अगर इन चीज़ों का धर्म स्थान पर ये दान करते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इनकी हेल्थ है जरूर अच्छी रहे, लेकिन फिर भी इन्हें इस बार स्पेशली इस साल अपनी हेल्थ की जरूर प्रिकॉशन रखनी चाहिए।
जी 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 जी, और भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे हमारे सेगमेंट में। हमारे लिसनर्स हमें अपनी हॉरोस्कोप डिटेल्स भेजते हैं ताकि हम आपसे उनके एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी जो सवाल हैं उनके जवाब आपसे ले सकें। तो आप भी जगजीत जी से बातचीत कर सकते हैं अगर आपको उनसे अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानकारी चाहिए। उनको बात करने के लिए या आप उनसे मिल भी सकते हैं तो संपर्क करने के लिए जो उनका नंबर है वो है 02103901133, और ईमेल पर भी आप बात अपना जो मैसेज है वो हमें भेज सकते हैं। ईमेल का पता है info@astrologerjagjeet.com।
जाने बस इतना आजान हम एक बिना
बहुत ही प्यारा भजन, और इसी के साथ हम जगजीत के जी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं बात कर रही थी आपके साथ डॉक्टर एल रॉन हर्बर्ट की, जो काफी अच्छी बुक उन्होंने लिखी है उसके बारे में, तो थोड़ी सी और दो चार लाइनें हैं जो आपके साथ डिस्कस शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि इस जगत में उलझन का अर्थ है अनियमित गतियां। यदि आप किसी व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाएं, तो संभव है कि आप अपने चारों ओर होने वाली अनियमित गतियों के कारण उलझन में पड़ जाएंगे। अगर आप एक तेज रफ्तार आंधी के बीच खड़े हो, जहां आपको चारों ओर धूल मिट्टी पत्ते और कागज उड़ रहे हो, तो संभव है कि आप उलझन का अनुभव करें। क्या उलझन को वास्तव में समझना संभव है? क्या उलझन की संरचना जैसी भी कोई चीज होती है? जी हाँ, होती है, और इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जगजीत जी, आज आपके पास हमारे लिए जो सेकंड हॉरोस्कोप है, कौन सा है?
जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 29 सितंबर 1983।
जी,
और इनका जो क्वेश्चन है इस साल के विषय में है कि ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो होरोस्कोप है और होरोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं वो मैंने बताना चाहूँगा। इनके होरोस्कोप में जो इनको प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं असेंडेंट की बात करूँ, वीनस, और वीनस के जो योग मंगल के साथ बन रहे हैं वो इनके होरोस्कोप में जरूर अच्छे हैं। और इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूं चंद्र की स्थिति इनके होरोस्कोप में एक तरफ से तो अच्छी है कि धन भाव में चंद्र का रहना, लेकिन जिस राशि में चंद्र है तो वो कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो वीवरिंग माइंड रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी रहती है। और इनके होरोस्कोप की अगर मैं बात करता हूँ तो शनि के जो योग हैं इनके होरोस्कोप में वो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि भाग्य स्थान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो एग्जाल्टेड हैं। अगर मैं ओवरऑल इनके होरोस्कोप की बात करूँ तो इनके होरोस्कोप में कुछ जो अच्छे योग बनते हैं, जैसा कि इन्होंने ये भी जानना चाहे कि ये साल जो है वो इनके लिए कैसा रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो शनि है इनके होरोस्कोप में एग्जाल्टेड हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो वो जरूर अच्छा रहता है। और जैसे कि इस साल भी जो इनके प्लैनेट्स चेंज हुए हैं उसमें मंगल की अगर मैं स्थिति की बात करता हूं तो मंगल की जो पोजीशन है मार्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, वैसे ही शनि की पोजीशन भी इस साल इनके लिए अच्छी है। अगर इस साल ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या बेचने के लिए सोचते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इन्हें जो लाभ के योग हैं ये जरूर बनते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे कि चंद्र की स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है, कई बार ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन है ये नहीं ले पाता, तो मैंने यही कहना चाहूँगा कि ये साल जो है वो इनके लिए जरूर अच्छा रहने वाला है। अगर चाहे ये जॉब में भी हैं, क्योंकि शनि और मंगल का जब ऐसा योग रहता है तो घर में कोई ना कोई जो मंगल कार्य है ये जरूर रहता है। अगर ये जॉब में भी हैं तो कहीं ना कहीं इस साल इनके जॉब में जो प्रमोशन के योग हैं या जॉब में कोई बढ़ोतरी के योग हैं ये जरूर इस साल इनके बनते हैं। तो मैं इन्हें यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल इनका जो ये साल है ये जरूर इनके लिए अच्छा रहने वाला है। जी,
और इसी के साथ एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और उसके बाद जगजीत जी से और भी कुछ बातें करेंगे। आप भी चाहें तो अपना हॉरोस्कोप जगजीत जी को भेज सकते हैं ताकि वो जो भी आपका सवाल होगा हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में उसको शामिल कर सके। और आप अपना उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ अपने एक सवाल के साथ अपने इस जगजीत जी के मोबाइल पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि जब भी आपका टर्न आएगा तो आपका वो सवाल जरूर शामिल किया जाएगा। और ये आपके जो सवालों के जवाब है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जगजीत जी हमारे पास स्टूडियो में आकर बताते हैं।
की है ये माया, कर्मों के खेल सारे कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे क्या क्या जब नजारे क्या क्या जब नजारे कर्मों की है ये माया कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की कर्मों से ही बने हैं इंसान जहां में आता इंसान जहां में आता कर्मों के ही सहारे कर्मों के ही सहारे कर्मों के ही सहारे कर्मों के ही सहारे कर्मों की है ये माया कोई राजा कोई भिक्षुक सब कर्म के तमाशे कोई राजा कोई भिक्षुक महलों में रहता कोई महलों में रहता कोई कोई फिरते मारे मारे कोई फिरते मारे मारे कोई फिरते मारे मारे कोई फिरते मारे मारे कर्मों की है ये माया कोई संत कोई डाकू कोई छीने कोई बाटे कोई संत कोई डाकू कोई जीते सारी दुनिया जीते सारी दुनिया और कोई सबसे हारे और कोई सबसे हारे और कोई सबसे हारे और कोई सबसे हारे कर्मों की है ये माया मजदूर देखो भूखा कोई बिन करे ही खाए मजदूर देखो भूखा कोई रोशनी को तरसे कोई रोशनी को तरसे कोई लूटता नजारे कोई लूटता नजारे कोई लूटता नजारे कोई लूटता नजारे कर्मों की है ये माया सब कर्म की है माया अब तक कोई न जाना सब कर्म की है माया तुम कर्म ऐसे करना तुम कर्म ऐसे करना देवे सभी दुआएं देवे सभी दुआएं देवे सभी दुआएं देवे सभी दुआएं कर्मों की है ये माया
लोग जगजीत जी से बात कर रहे थे और मैं उस जगजीत जी से बात करने से पहले आपके साथ डिस्कस कर रही थी, उलझन के ऊपर बात कर रही थी। थोड़ी सी और दो चार लाइनें उलझन के ऊपर आपके साथ शेयर करते हैं। कोई भी उलझन केवल तभी तक एक उलझन है जब तक उसके सभी कण गतिमान होते हैं। कोई भी उलझन केवल तभी तक उलझन बनी रहती है जब तक कि उसका कोई तथ्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता या समझा नहीं जाता। मूर्खता का मूल कारण उलझन है। मूर्ख व्यक्ति के लिए अत्यंत सरल बातों को छोड़कर सभी बातें उलझन भरी होती हैं। अतः यदि व्यक्ति उलझन की संरचना को समझ ले तो उसकी प्रतिभा में और वृद्धि हो जाएगी, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। अगर आपने कभी सीखने की इच्छा रखने वाले किसी युवक को सिखाया हो जब बहुत अधिक प्रतिभाशाली नहीं था, तो आपको ये सिद्धांत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई वस्तु कैसे काम करती है। आप उसे शुरू से अंत तक समझाते हैं और अनेक बार समझाते हैं और फिर आप उसे उस मशीन पर काम करने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन वह दूसरे ही क्षण सब कुछ गड़बड़ कर देता है। उसे समझ नहीं आया, जो कुछ आपने समझाया उसकी बुद्धि में नहीं बैठा। आप उसकी नासमझे को अपने दिमाग में समझ सकते हैं और अब आपका यह कहना सही होगा कि वह उलझन में पड़ गया है। यदि कोई विद्यार्थी उलझनों में घिरा है तो केवल इसी आधार पर उसकी 99% शिक्षा को असफल कहा जा सकता है। केवल नौकरी के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी जब जब असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो किसी न किसी रूप में उसके पीछे कोई उलझन छिपी होती है। किसी मशीन के बारे में सीखने के लिए या जीवन जीने के लिए व्यक्ति में उलझनों का मुकाबला करने या उलझनों से अलग होकर उनको देख पाने की योग्यता होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। और जगजीत जी, अभी हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं वो अपने राशि के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं, तो आप आज उनमें से कौन सी राशि के बारे में हमारे साथ डिस्कस करेंगे?
जी हाँ, अगर मैं स्टार साइन की बात करता हूँ तो इस बार हम सैजिटेरियस यानी के धनु के विषय में बात करेंगे।
जी,
जैसे कि अगर सैजिटेरियस की बात करता हूँ तो होरोस्कोप की भी अगर मैं बात करूँ तो इस जो स्टार साइन है या राशि को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं वो है जुपिटर। और होरोस्कोप की अगर बात करें तो जुपिटर होरोस्कोप में बहुत सारी जो चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंट हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या फादर हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर जुपिटर की जो स्थिति है होरोस्कोप में अच्छी रहती है तो इंसान काफी धार्मिक रहता है, अच्छे कार्य करने वाला रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर जुपिटर और राहु के जो योग हैं ये अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमेशा जो फ्रेश एयर है उसको माना जाता है और राहु जो होता है वो कड़वा धुआं रहता है, जहरीली हवा रहती है। तो बृहस्पति राहु के जो योग हैं ये अच्छे नहीं माने जाते। तो इसी तरह से अगर मैं धनु सैजिटेरियस की बात करता हूं तो इस स्टार साइन के जितने भी जातक हैं अगर अपनी जिंदगी में येलो कलर का, पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस राशि के जातक अगर घर में कई बार बैठते हैं, छोटी छोटी डिस्कशन पर डिफरेंस ओपिनियन हो जाते हैं, तो उस वक्त अगर किसी भी चांदी के बर्तन में हम हल्दी लगाकर घर में कहीं भी स्थापित करते हैं तो माना जाता है कोई वास्तु दोष है, तो उस समय भी ये अच्छा माना जाता है। जैसे कि जो जुपिटर है ये पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर व्यक्ति अपने पिता की, फादर की दी हुई वस्तुओं का यूज करते हैं, चाहे पिता के कपड़े रहें और चाहे बिजनेस है, तो वो जरूर अच्छा रहता है। अगर फादर के बिजनेस को वो आगे बढ़ाए तो ये काफी अच्छा रहता है। और दूसरा, इस स्टार साइन के जो जातक हैं अगर अपने घर में येलो जो फ्लावर रहते हैं, पीले फूल वाले जो पौधे लगाते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है, वो बच्चों के लिए भी अच्छा माना जाता है। और इस राशि का जो उत्तम दान माना गया है वो घी, दही, कपूर इन चीजों का अगर दान धर्म स्थान पर करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि इस राशि के जातक अगर कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, अगर उनकी मदद करते हैं किसी भी तरह से, तो वो भी अच्छा माना जाता है।
जी जगजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए। जब भी आपसे बातचीत होती है तो वक्त कहाँ भाग कर चला जाता है, हमें हमेशा वक्त की कमी खलती है और यही सोचते हैं कि आपसे और ज्यादा जानकारी लें, मगर हमेशा इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम में हमारे साथ फिर से शामिल होंगे, हमें हमारे जो लिसनर्स के कुछ जो सवाल हैं उनका आप जवाब देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने लिसनर्स से हमेशा अलविदा मांगते हैं और उनकी बेस्ट विशेस की हमेशा कामना करते हैं। आज के प्रोग्राम में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जब तक उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो हमारे लिसनर्स का है बहुत अच्छा निकले, जहाँ पे रहे वो सही सलामत रहे, हमारी दुआ है उनके लिए। और जगजीत जी नमस्कार।
नमस्कार।
NZ/ ग्राहों का खेल।